एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान, और आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया को देखने का और खासकर विज्ञान को समझने का नजरिया ही बदल दिया।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। हाँ, जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो है कार्ल पॉपर की क्लासिक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। नाम सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर यकीन मानिए इसके अंदर के जो आइडियाज हैं ना, वो हमारी रोजमर्रा की सोच पर भी गहरा असर डालते हैं।
बिल्कुल, आज के जमाने में सोचिए जरा, इंटरनेट पर, टीवी पर, दोस्तों की बातों में कितनी तरह की जानकारी और दावे तैरते रहते हैं।
हाँ, हर तरफ से
कुछ वैज्ञानिक लगते हैं, कुछ नहीं। ये समझना कि भाई असली वैज्ञानिक सोच क्या है और क्या चीज सिर्फ वैज्ञानिक होने का दिखावा कर रही है, मतलब वो जिसे हम छद्म विज्ञान या सूडो साइंस कहते हैं,
हाँ,
ये आजकल शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
और यहीं पर कार्ल पॉपर की सोच बहुत काम आती है। ये किताब हमें सिखाती है कि विज्ञान सिर्फ सबूत इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा है। ये एक तरीका है, एक नजरिया है दुनिया को समझने का।
तो चलिए आज इसी नजरिए को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल।
सबसे पहले बात करते हैं इस क्रांतिकारी विचार के पीछे के इंसान की, कार्ल पॉपर। 1902 में वियना, ऑस्ट्रिया में जन्मे और 1994 तक हमारे बीच रहे। बाद में वो ब्रिटिश नागरिक बन गए।
हाँ, और उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में गिना जाता है, खासकर जब विज्ञान के दर्शन की बात आती है।
दिलचस्प बात यह है कि पॉपर उस समय वियना में थे जब वहां लॉजिकल पॉजिटिविज्म नाम के एक विचार का बड़ा जोर था।
अच्छा, ये क्या था?
ये लोग मानते थे कि ज्ञान वही है जिसे हम सीधे तौर पर अनुभव से देखकर, सुनकर, जांचकर सही साबित कर सकें, मतलब वेरीफाई कर सकें।
ओके, मतलब जो दिखे, जो परखा जा सके, वही सच।
हाँ, कुछ वैसा ही। मगर पॉपर, वो इस ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बने, बल्कि वो तो इसके सबसे बड़े आलोचक बन गए।
अरे वाह, क्यों?
उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की। एक तरफ थे आइंस्टाइन, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसी भविष्यवाणियां कर रही थी जो बहुत सटीक थी, बहुत जोखिम भरी थी, मतलब ऐसी कि अगर वो गलत होती तो पूरी थ्योरी ही गिर जाती।
हाई स्टेक्स।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे मार्क्सवाद या फ्राइड के सिद्धांत। पॉपर ने महसूस किया कि ये सिद्धांत तो जैसे हर चीज की व्याख्या कर सकते थे।
हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, मतलब कुछ भी हो जाए वो फिट हो ही जाता है।
एग्जैक्टली। उन्हें गलत साबित करना लगभग नामुमकिन लगता था, और इसी फर्क ने पॉपर को सोचने पर मजबूर किया कि आखिर विज्ञान को क्या चीज वैज्ञानिक बनाती है।
अच्छा, तो ये फर्क देखना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था।
हाँ, यहीं से उनकी पूरी फिलॉसफी की शुरुआत हुई। वो विज्ञान को सिर्फ बाहर से नहीं देख रहे थे, बल्कि उसकी अंदरूनी बनावट, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे थे।
तो ये किताब द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये करती क्या है असल में?
इसका मुख्य काम है विज्ञान के बारे में हमारी एक बहुत पुरानी और आम समझ को चैलेंज करना। हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान ऐसे काम करता है, वैज्ञानिक बहुत सारी चीजें देखते हैं,
जैसे ये कौआ काला है, वो कौआ काला है, हजारों कौए काले हैं।
हाँ, और फिर एक आम नियम बना लेते हैं, सभी कौए काले होते हैं। इसे कहते हैं आगमन या इंडक्शन।
पॉपर कहते हैं, भाई ये तरीका लॉजिकली ठीक नहीं है। आप कितने भी काले कौए देख लें, आप कभी 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि दुनिया में सारे कौए काले ही हैं।
क्या पता कल आपको कहीं एक सफेद कौआ दिख जाए।
बिल्कुल, बस एक सफेद कौआ उस सारे कौए काले हैं वाले नियम को झूठा साबित कर देगा। ये है आगमन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन।
तो अगर विज्ञान सही साबित करने से आगे नहीं बढ़ता तो फिर कैसे बढ़ता है?
पॉपर का क्रांतिकारी जवाब है मिथ्याकरण से, यानी फॉल्सिफिकेशन से।
फॉल्सिफिकेशन मतलब?
मतलब विज्ञान की असली ताकत सही साबित करने में नहीं, बल्कि गलत साबित होने का जोखिम उठाने में है। एक सिद्धांत वैज्ञानिक तभी है जब हम सोच सकें कि ऐसा कौन सा सबूत मिल सकता है जो उसे गलत साबित कर दे।
हाँ, ये तो उल्टी बात लग रही है
ना? अगर कोई सिद्धांत ऐसा है जिसे कोई भी चीज गलत साबित ही नहीं कर सकती, तो पॉपर के अनुसार वो शायद विज्ञान है ही नहीं।
और यहीं से वो दूसरी बड़ी समस्या का हल निकालते हैं, सीमांकन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन।
हाँ, कि असली विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, और छद्म विज्ञान जैसे ज्योतिष या कुछ तरह के अंधविश्वास के बीच वो लाइन कहाँ खींची जाए।
पॉपर का जवाब है मिथ्याकरण योग्यता, फॉल्सिफाइबिलिटी, क्या आपका सिद्धांत इतना साफ और साहसी है कि वो कुछ संभावनाओं को खारिज करता है? क्या वो गलत साबित होने का खतरा मोल लेता है?
संक्षेप में पॉपर हमें दिखाते हैं कि विज्ञान कोई तथ्यों का म्यूजियम नहीं है जिसे हम बस भरते जाते हैं। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
कैसी प्रक्रिया?
अनुमान लगाने और फिर बेरहमी से उन अनुमानों की आलोचना करने, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करने की। हम गलतियों को छांटकर ही सच के थोड़ा और करीब पहुंचते हैं।
चलिए अब पॉपर के इस मेन आइडिया फॉल्सिफिकेशन को थोड़ा और खोलते हैं। जैसा हमने कहा, पॉपर ने इंडक्शन की कमजोरी पकड़ ली। लाखों सफेद हंस देखने के बाद भी आप ये दावा नहीं कर सकते कि सभी हंस सफेद हैं।
हाँ, एक काला हंस काफी है आपके दावे को धराशाही करने के लिए।
तो पॉपर ने कहा, विज्ञान का लक्ष्य वेरिफिकेशन यानी पुष्टि करना नहीं होना चाहिए, यह तो इम्पॉसिबल है। लक्ष्य होना चाहिए फॉल्सिफिकेशन यानी गलत साबित करने की कोशिश करना।
और विज्ञान और गैर विज्ञान के बीच असली फर्क यही है। क्या कोई सिद्धांत ऐसा दावा कर रहा है जिसे हम टेस्ट कर सकें और पोटेंशियली गलत पा सकें?
सोचिए, ये कितना अलग नजरिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि साइंटिस्ट वो साबित करना चाहते हैं जो सही है। पॉपर कह रहे हैं, नहीं, असली साइंटिस्ट वो है जो ये बताने को तैयार है कि अगर ऐसा कुछ दिखा तो मैं मान लूंगा कि मेरी थ्योरी गलत है।
हाँ, इसमें एक तरह की क्या कहेंगे बौद्धिक ईमानदारी छिपी है।
और इसी से जुड़ा है वो डिमार्केशन का सवाल। जैसे ज्योतिष को लें।
हाँ, उसका क्या?
ज्योतिष की भविष्यवाणियां अक्सर बहुत गोलमोल होती हैं, है ना?
हाँ।
आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अब ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, छोटा भी, बड़ा भी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
सही बात है। और अगर भविष्यवाणी साफ तौर पर गलत भी निकले,
हाँ,
तो अक्सर ज्योतिषी कोई ना कोई किंतु परंतु एडहॉक एक्सप्लेनेशन जोड़कर सिद्धांत को बचा लेते हैं।
जैसे,
ओह, शनि की दृष्टि थी इसलिए ऐसा हुआ,
हाँ,
या कुछ और वगैरह।
पॉपर कहते हैं यही छद्म विज्ञान की पहचान है, वो गलत साबित होने से बचता है, कतराता है।
जबकि एक वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे आइंस्टाइन का सिद्धांत बहुत स्पेसिफिक, बहुत रिस्की भविष्यवाणी करता है, जैसे गुरुवाकर्षण प्रकाश को एक खास एंगल पर मोड़ेगा।
और अगर वैसा नहीं मुड़ता
तो सिद्धांत गलत, उसमें बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है। वो अपनी गर्दन बाहर निकालता है, रिस्क लेता है।
अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सिद्धांत ऑब्जर्वेशन पर टिके हैं तो ये ऑब्जर्वेशन कितने भरोसेमंद है? क्या हम जो देखते हैं वो एकदम प्योर सच होता है?
अच्छा सवाल है। पॉपर मानते हैं कि नहीं, हमारे ऑब्जर्वेशंस भी हमारी उम्मीदों और थ्योरीज से प्रभावित होते हैं, थ्योरी लेडन होते हैं। ज्ञान का कोई 100% ठोस चट्टानी आधार नहीं है।
अरे, तो फिर क्या करें, कैसे आगे बढ़ें?
पॉपर का हल है अंतर्व्यक्तिपरक परीक्षण योग्यता, इंटरसब्जेक्टिव टेस्टेबिलिटी। सुनने में भारी शब्द है पर मतलब सीधा है।
क्या मतलब है?
क्या जो मैं देख रही हूँ उसे दूसरे भी इंडिपेंडेंटली जांच सकते हैं और वैसा ही नतीजा पा सकते हैं? ऑब्जेक्टिविटी किसी साइंटिस्ट के दिमाग की शुद्धता में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उसके दावे पब्लिक जांच के लिए खुले हैं या नहीं।
जैसे कोई रेसिपी, कोई भी उसे आजमा कर देख सकता है कि वो काम करती है या नहीं।
बिल्कुल सही उदाहरण है। पॉपर ने इसकी तुलना दलदल में खंभे गाड़ने से की है।
दलदल में खंभे?
हाँ, हम खंभों को तब तक नीचे धकेलते हैं जब तक हमें लगता है कि वो इमारत को संभालने के लिए काफी मजबूत हो गए हैं। हम इसलिए नहीं रुकते कि हमें नीचे चट्टान मिल गई है, बल्कि इसलिए कि अभी के लिए वो टिके हुए लग रहे हैं।
अच्छा, प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग।
हाँ, विज्ञान का आधार भी कुछ ऐसा ही है। हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, पर वो व्यवहारिक होता है, काम चलाऊ होता है।
तो हमने देखा कि विज्ञान गलत साबित करने की कोशिश से आगे बढ़ता है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि पॉपर के हिसाब से ये प्रक्रिया असल में चलती कैसे है।
पॉपर जोर देते हैं कि विज्ञान ऑब्जर्वेशन से शुरू नहीं होता जैसा हम अक्सर सोचते हैं।
तो फिर किससे शुरू होता है?
वो शुरू होता है किसी समस्या से या एक साहसिक अनुमान से, कंजेक्चर और हाइपोथेसिस से। आप एक थ्योरी बनाते हैं, फिर उससे लॉजिकली, डिडक्टिवली भविष्यवाणियां निकालते हैं और फिर उन भविष्यवाणियों को टेस्ट करते हैं, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस अनुमान लगाने और फिर खंडन करने, कंजेक्चर्स एंड रेफ्यूटेशंस, का एक साइकिल है।
बिल्कुल, एक लगातार चलने वाला साइकिल।
और कुछ सिद्धांत दूसरों से बेहतर क्यों होते?
पॉपर कहते हैं वो सिद्धांत बेहतर है जो ज्यादा साहसिक है, जो ज्यादा चीजों के बारे में भविष्यवाणी करता है, और इसलिए जिसके गलत साबित होने का खतरा ज्यादा है। मतलब हायर डिग्री ऑफ टेस्टेबिलिटी या फॉल्सिफिकेबिलिटी।
जैसे आइंस्टाइन का सिद्धांत।
हाँ, वो इसीलिए महान था क्योंकि वो न्यूटन के सिद्धांत से ज्यादा बोल्ड दावे कर रहा था और ज्यादा सटीक परीक्षणों की मांग कर रहा था।
यहाँ एक और मजेदार थोड़ी उल्टी लगने वाली बात है संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी को लेकर।
हाँ, ये तो काफी काउंटर इंट्यूटिव है।
आमतौर पर लगता है कि विज्ञान को ऐसे सिद्धांत खोजने चाहिए जिनके सही होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा हो।
पॉपर कहते हैं बिल्कुल नहीं। ज्यादा संभावना का मतलब है कम जानकारी। जैसे कल दिल्ली में या तो बारिश होगी या नहीं होगी।
ये तो 100% सच है, पर इससे हमें पता क्या चला? कुछ नहीं।
एग्जैक्टली।
जबकि कम संभावित, इम्प्रोबेबल, लेकिन ज्यादा जानकारी देने वाला दावा, जैसे कल दिल्ली में शाम 4 से 5 के बीच 10 मिलीमीटर बारिश होगी।
हाँ, ये बहुत जोखिम भरा है, इसके गलत होने की संभावना ज्यादा है।
लेकिन अगर ये सही निकला तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। पॉपर कहते हैं विज्ञान को ऐसे ही साहसिक, कम संभावित, लेकिन ज्यादा जानकारीपूर्ण सिद्धांतों की तलाश करनी चाहिए और फिर उनकी कड़ी परीक्षा लेनी चाहिए।
और जब कोई सिद्धांत इन कठिन परीक्षाओं में बार बार खरा उतरता है, जब वो गलत साबित होने की कोशिशों को झेल जाता है, तब पॉपर कहते हैं कि वो सिद्धांत पुष्ट हुआ है, कोरोबरेटेड हुआ है। ध्यान दें, सही साबित नहीं बल्कि पुष्ट, कोरोबरेटेड।
ये बस उसके पिछले प्रदर्शन का एक रिकॉर्ड है, एक रिपोर्ट कार्ड जैसा।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये भविष्य की गारंटी नहीं है, अगला टेस्ट उसे गलत साबित कर सकता है। ज्ञान हमेशा हमेशा अस्थाई है।
तो अब अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो पॉपर की सोच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? क्या ये सिर्फ साइंटिस्ट लोगों के लिए है?
अरे बिल्कुल नहीं, ये सोचने का एक तरीका है जो हर जगह लागू होता है। सबसे पहले तो अपने विश्वासों पर ही इसे लागू करें।
अपने विश्वासों पर कैसे?
हम अक्सर अपनी मान्यताओं को पत्थर की लकीर मान लेते हैं, है ना? पॉपर की तरह सोचें, अपनी मान्यता को एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस माने, फिर खुद से पूछें, ऐसा क्या सबूत मिलेगा जिससे मैं मान लूंगा कि मेरी ये सोच गलत है?
अच्छा,
जैसे अगर कोई सोचता है मैं क्रिएटिव नहीं हूं, हाँ, तो इसे हाइपोथेसिस माने। क्या कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश, शायद एक पेंटिंग बनाना या कुछ लिखना, इस सोच को गलत साबित नहीं करेगा। कोशिश करके देखें।
बिजनेस और इनोवेशन में तो ये कमाल का काम करता है। आजकल लीन स्टार्टअप का तरीका बहुत चलता है।
हाँ, सुना इसके बारे में।
ये असल में पॉपर की ही सोच है। आपका बिजनेस आइडिया एक अनुमान है, उसे जल्दी से टेस्ट करो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाकर। अगर बाजार उसे गलत साबित करता है, मतलब ग्राहक नहीं खरीदते,
तो आइडिया बदलो, पिवट करो और फिर टेस्ट करो।
बिल्कुल, ये लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है, गलतियों से सीखना।
और समस्या सुलझाने में भी ये मददगार है। अक्सर हम एक सही जवाब ढूंढते हैं। पॉपर का तरीका कहता है कई संभावित समाधान सोचो, मतलब हाइपोथेसिस बनाओ,
और फिर
हर एक की कमजोरी ढूंढने की कोशिश करो, उसे गलत साबित करने की कोशिश करो। जो समाधान आलोचना के सामने सबसे ज्यादा टिकेगा, शायद वही सबसे बेहतर है।
और सामाजिक या राजनीतिक दर्शों में यहाँ तो ये और भी जरूरी लगता है।
बिल्कुल, कट्टरता, डॉगमेटिज्म से बचें। जब कोई दावा करे तो पूछें, क्या ये टेस्ट किया जा सकता है? जैसे ये पॉलिसी लागू होने से 2 साल में गरीबी 5% कम हो जाएगी। ये एक परीक्षण योग्य दावा है।
सही। उन विचारों से सावधान रहें जो हर चीज की व्याख्या कर सकते हैं लेकिन कभी गलत साबित नहीं हो सकते।
हाँ, वो अक्सर खोखले होते हैं।
और शिक्षा में भी इसे लाया जा सकता है। सिर्फ जानकारी रटाने के बजाय बच्चों को सवाल पूछना, अपने आइडिया बनाना, उन्हें टेस्ट करना, और गलतियों से सीखना सिखाना चाहिए।
हाँ, ये बहुत जरूरी है
कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे लिए तो ये सोचना कि ज्ञान बढ़ता कैसे है, इस पर एक बिल्कुल नया नजरिया मिला। ये कि आलोचना करना, सवाल उठाना, किसी चीज को गलत साबित करने की कोशिश करना, ये सब ज्ञान बढ़ाने के जरूरी औजार हैं, दुश्मन नहीं।
और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का सबक। ये मानना कि हम जो भी जानते हैं वो अस्थाई है, उसमें गलती हो सकती है, ये हमें सीखने के लिए हमेशा खुला रखता है। पॉपर का एक मशहूर कथन है जिसका सार है, कि विज्ञान का खेल कभी खत्म नहीं होता। जो ये मान लेता है कि अब और परीक्षण की जरूरत नहीं, वो खेल से बाहर हो जाता है।
अरे वाह, ये हमेशा सवाल पूछते रहने और जांचते रहने की अहमियत बताता है।
हाँ, और एक और विचार जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, एक वैज्ञानिक कथन अगर वास्तविकता के बारे में है तो वो गलत साबित होने लायक फॉल्सिफाइबल होना चाहिए। अगर वो गलत साबित होने लायक नहीं है तो वो वास्तविकता के बारे में नहीं है।
ये हमें खोखले दावों और असली ज्ञान के बीच फर्क करने में मदद करता है। सीधी बात,
बिल्कुल। तो मुख्य बातें याद रखें, विज्ञान की पहचान गलत साबित होने की गुंजाइश है, फॉल्सिफाइबिलिटी। ज्ञान गलतियों को हटाकर आगे बढ़ता है। सारा ज्ञान अस्थाई है।
और गलत साबित होना हार नहीं, सीखने का एक मौका है।
हाँ, पॉपर हमें निश्चितता की झूठी तलाश छोड़कर ज्ञान की एक कभी न खत्म होने वाली साहसिक यात्रा पर ले जाते हैं।
और शायद यही सबसे बड़ा संदेश है। सवाल पूछते रहिए, अपने विचारों को चुनौती देते रहिए और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।